नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव से जुड़े एक नए प्लान का खुलासा किया है। राज्यसभा में एक दी गई विस्तृत जानकारी में नितिन गडकरी ने उनके मंत्रालय द्वारा नेशनल हाईवे के विकास और रखरखाव के प्रयासों की जानकारी दी। नए हाईवे बनाने और उनके मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मंत्रालय की है। इन जिम्मेदारियों में असेसमेंट, रखरखाव और सड़कों की स्थिति में सुधार जैसी चीज़ें शामिल हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने खासतौर पर नेशनल हाईवे सेक्शन के रखरखाव और मरम्मत के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। जिन रास्तों पर अभी काम चल रहा है या जिन्हें ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ट्रांसफर या फिर संचालन और रखरखाव के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी संबंधित रियायत पाने वाले या कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है, जब तक कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड खत्म ना हो जाए। अन्य दूसरे हाईवे के लिए मेंटेनेंस के जरिए मेंटेन किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि नेशनल हाईवे का कोई भी हिस्सा बिना कॉन्ट्रैक्चुअल मेंटेनेंस के ना छूटे। मंत्रालय ने कई एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इनमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य स्तर पर शामिल हैं। ये एजेंसियां कमियों, क्षतियों को दूर करके और बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर नेशनल हाईवे को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जिन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उनमें बारिश, बाढ़ का स्तर, एरिया और मिट्टी जैसी कैटेगरी शामिल हैं। इनमें जल निकासी प्रणालियों और पुलियों और पुलों जैसी जल निकासी संरचनाओं के प्रभावी डिज़ाइन और निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए इन फैक्टर्स को शामिल किया गया है। अगर आप अपने किसी वित्तीय लक्ष्य के लिए एक बड़ी रकम जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से काम लेना होगा। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी रकम को मिलाकर बड़ा कॉर्पस जमा किया जा सकता है। लेकिन आप ये छोटी छोटी रकम किसी सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट में डालकर फंड जुटाएंगे, तो इसमें आपको काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेविंग्स अकाउंट या RD पर मिलने वाला रिटर्न कम होता है। इसकी जगह अगर आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करेंगे, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ बताएगी 5 बातों को समझना होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3,000 रुपये के साधारण से लगने वाली SIP भी 12% सालाना रिटर्न के आधार पर 30 साल में करीब 106 करोड़ रुपये का भारी भरकम कॉर्पस बन सकती है। कंपाउंडिंग रिटर्न की इसी ताकत के कारण निवेश की जाने वाली छोटी छोटी रकम भी समय के साथ साथ बड़ी रकम में बदल सकती है। लेकिन SIP के जरिए निवेश करते समय डिसिप्लिन यानी अनुशासन का पालन करना ज़रूरी है। SIP के जरिए बड़ी रकम बनाने के लिए आपको नियमित रूप से निवेश करना होगा। इसके लिए आपको वो रियलिस्टिक रकम पता होनी चाहिए जिसे आप हर महीने आराम से निवेश कर सकते हैं। ये रकम बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। आसान नियम ये है कि आपकी मंथली इनकम का 20% हिस्सा लंबी अवधि के लिए निवेश में जाना चाहिए। जब आप युवा होते हैं, तो आप इसमें निवेश के लिए पैसे का एक बड़ा हिस्सा अलग रख सकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं और ऐसे में आपको अपनी मंथली SIP कम करनी पड़ सकती है। अगर आप SIP से बेहतरीन रिटर्न चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश ना करें। हम सभी जल्दी जल्दी से लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 3 साल का निवेश करने के बाद ही एक मुश्त मोटी रकम पाने की उम्मीद करते हैं, तो ये व्यवहारिक नहीं हो सकता है। इसके अलावा शेयर बाज़ार में निवेश के साथ कुछ जोखिम और अस्थिरता भी रहती है। इसलिए अगर आप लंबी अवधि यानी कम से कम 5 या 7 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आप बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में अस्थिरता और गिरावट का दौर निकल जाने की उम्मीद अधिक होती है। जब बाजार में गिरावट हो और आपका पोर्टफोलियो लाल निशान पर हो, तो डरना और घबराना स्वाभाविक है। लेकिन अचानक अपनी SIP बंद ना करें। आप कंपाउंडिंग का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप लंबे समय तक निवेशित रहें। इसलिए अपने म्यूचुअल फंड के चुनाव पर भरोसा रखें और धैर्य रखें। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।